Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-444-2342-1050 and 2311-0464. I'm Veb Havjyot Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी, धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ वैभव।
एब्सोल्युटली सुबोध, स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 53,000 करोड़ रुपीस इनटू द इंडियन कैपिटल मार्केट सो फार इन जुलाई। सी प्रोडक्शन इन इंडिया टू सरपास 300 मिलियन टन्स बाय 2030, सेज स्टील सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा। एंड डोमेस्टिक मार्केट्स टू टेक क्यूज फ्रॉम ग्लोबल सेंट्रल बैंक मीटिंग्स, ऑटो सेल्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स नेक्स्ट वीक।
जुलाई में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। 2030 तक भारत में इस्पात का उत्पादन 30 करोड़ टन का आंकड़ा पार करने की उम्मीद, कहा इस्पात सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा ने। और अगले सप्ताह देश के बाजारों पर दुनिया के केंद्रीय बैंकों की बैठकों, वाहन क्षेत्र की बिक्री और कॉरपोरेट आमदनी के आंकड़ों का असर पड़ने की संभावना। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में 33,688 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 19,223 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे इस महीने भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 52,911 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले जून में विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मई में उन्होंने भारतीय बाजार से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए थे और अप्रैल में भी उन्होंने 8,700 करोड़ रुपए निकाले थे। आइए कॉलर्स के पास चलते हैं वैभव।
फर्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, योगेश। योगेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि बजट से निवेशकों में खास खुशी नहीं है और हम भी खुश नहीं है। मैम, मेरा सवाल ये है कि जो LTCG बढ़ाया गया है 12.5% किया गया है, क्या ये LTCG लेना सही भी है? क्योंकि कंपनी जो मुनाफा कमाती हैं वो ऑलरेडी टैक्स देती हैं, उसके बाद जो बचता है वो हमें मिलता है। तो एक तो सवाल ये है, फंडामेंटली LTCG आप सही मानती हैं गलत मानती हैं? दूसरा हमारा सवाल ये है, क्या अब टैक्स हार्वेस्टिंग करने की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी?
जी, तो जो आपका सवाल है अबाउट टैक्स हार्वेस्टिंग, उस पे आई गेस आपका ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो एग्जेम्पशन लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्रॉम इक्विटी, वो 1 लाख से 1.25 लाख हो गई है। बट द थिंग एक्चुअली इज टैक्स हार्वेस्टिंग थोड़ा सा एक हैसल हो जाती है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए करने के लिए, क्योंकि आप मैनेज कर रहे होते हैं कि आप अपने किन्हीं दो फाइनेंशियल ईयर्स में अपने 1.25 को कैसे उसका मुनाफा पा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा करने पे कोई कुछ परसेंटेज बेनिफिट भी हो जाए, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें एक हैसल हो जाती है। आपको एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट, एग्जैक्ट उतने ही यूनिट्स को ही सेल करना होता है। तो मेरी राय जनरली ये रहती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, चाहे वो इन्वेस्ट करना हो, चाहे सेल करना हो, मतलब रिडीम करना हो, उसको अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, अपने एसेट एलोकेशन और अपने गोल्स के नियम के हिसाब से करिए। क्योंकि अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग जैसी चीजों में पड़ते हैं, हो भी सकता है कि इसमें मुनाफा हो जाए या थोड़ा सा आप कुछ सेव कर पाएं एक्स्ट्रा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल उस वजह से सफर करे जब पैसा चाहिए तब ना हो।
जी चले अगले कॉलर के पास, कोलकाता, अनिमेश है कोलकाता से, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू।
जी
फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज इट सेफ टू इन्वेस्ट विद म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग टैक्सेबल इनकम, वेदर इट विल बी टैक्स फ्री फॉर एवर, एवरी ईयर न्यू बजट कम्स एंड देयर आर सम चेंजेस। And my second question is, how far a mutual fund is beneficial for the senior citizen? Thank you, sir.
Right. तो जो आप टैक्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट पूछ रहे हैं, आई वुड एक्चुअली लाइक टू से दैट यू नो वेन यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन टू लेट्स से सर्टन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, देन द थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल एक्चुअली इज चूजिंग द राइट टाइप ऑफ लेट्स से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टाइप ऑफ एसेट क्लास। टैक्सेशन जहां पर आ जाता है वहां पे फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर देर इज नो कंट्रोल रियली। देर आर अ फ्यू इन यू नो वेरी गुड बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वन ऑफ देम बींग दैट they are actually very well regulated by SEBI that we all know. Then another point that goes in mutual funds favor is that they have to adhere to various you know disclosures. You get to see the daily NAV, which is the price of a fund, and that too at a very you know I guess late evening. They have to disclose their prices, they have to come out with their monthly portfolio, so you know where your hard earned money is being invested in. Then their expense ratios are very well regulated. Also for mutual funds, they are kind of an equalizer. So the NAV that is being shown to you is the same that will be shown to me. So, you know, there is kind of an equalizer when it comes to mutual funds. Particularly on the point regarding senior citizens, to my mind, mutual funds, because of the, you know, very well regulated aspect and the disclosures that come in, interestingly, they also offer you kind of a few kind of products which are favorable for senior citizens in terms of, let's say you, when you're not getting your salary, you would need to maintain a kind of asset allocation such that you also have a stable asset class in your portfolio, something like debt mutual funds. And you also are invested in equity mutual funds, which sort of aim to provide you inflation beating returns, because that is a requirement if, you know, there is no salary coming in. And mutual funds beautifully offer you a aggressive hybrid kind of a category or a equity savings kind of a category where they mix equity and debt asset class, which I believe are pretty well suited for a senior citizen as well.
And we have a next caller on this show. We have Vikas from Kolkata. Vikas, swagat hai aapka show mein. Apna sawal poochhe.
Ji, namaste market mantra.
Namaskar.
Tax badhane se mutual fund mein tax badhega, uska kya effect hoga? Aur dusra, Fed ne lagbhag nishana de diya ki uska interest rate ghatane ke door par hai. To isme market mein kya effect padega?
Ji, आप जो कह रहे हैं डेट बढ़ाने से टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो एक्चुअली सबके लिए काफी डिफरेंट हो सकता है। आपने कितना अमाउंट डाला हुआ है, आप कितना कब निकाल रहे हैं, तब टैक्सेशन रूल क्या हो जाते हैं। आई वुड एक्चुअली लाइक टू से कि आप अपनी डेट एलोकेशन को इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए अभी आपका, क्योंकि मार्केट की इतनी बढ़ोतरी हो गई है, तो आपका काफी ज्यादा साइजेबल अक्यूमुलेशन हो गया है। इन टाइम्स लाइक दीज इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल टू हैव अ यू नो मूव सम पोर्शन इन फिक्स्ड इनकम थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर आप अपने डेट म्यूचुअल फंड्स की एलोकेशंस को एसेट एलोकेशन और गोल ओरिएंटेशन से देखेंगे तो आई वुड से वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज टैक्स इज समथिंग दैट यू नो वी कांट रियली विश देम अवे, मतलब वो आएगा तो हमें देना ही है, वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन आर गोल्स। और आपका दूसरा प्रश्न एकदम मेरे ध्यान में अभी आ नहीं रहा है।
इट वॉज रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स।
जेनरिक टैक्सेशन भी कह रही।
ओके सो या
लगभग इन्होंने उस पर जवाब दे ही दिया।
हाँ जी, हाँ जी।
अगले कॉलर के पास चलते हैं हम। दिल्ली से विनोद हमारे साथ है। विनोद, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
मेरी तरफ से पूरी मार्केट मंत्रा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
मेरा मैम से सवाल ये है कि मैं कुछ 7-8 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ और जो फंड मैंने घर लेने के लिए गोल्ड के लिए एलोकेट किए थे उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, लेकिन जहां मैं घर देख रहा हूँ वो वहां प्रॉपर्टी के ट्रिपल रेट हो गए हैं। तो अब मुझे गाइड करें कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने का और क्या तरीका है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कोई प्रॉपर्टी लेके और उसका रेंट लूं? अभी मुझे अगले 2 साल तक की जरूरत नहीं है घर की, अगले 2 साल के लिए प्लान कर रहा हूं मैं। तो या कोई प्रॉपर्टी लेके उसका रेंट लेता रहा हूं तब तक, या म्यूचुअल फंड में बना रहा हूं। इस इन्फ्लेशन को बीट करने का और क्या तरीका हो सकता है? थैंक यू
जी। विनोद जी, आपका सवाल जितना मैं समझ पाई हूं वो प्रॉपर्टी कहां ले, कैसे ले, कितना वहां मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करा जाए, ये मेरे डोमेन से थोड़ा सा बाहर है। जहां तक एक मैं आपको एडवाइस दे सकती हूं, दैट इज पर्टेनिंग टू द गोल दैट यू हैड इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स फॉर। सो इफ जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर ये आपका एक नेगोशिएबल गोल लग रहा है कि आप थोड़ा सा और टाइम रुक सकते हैं या आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं कि आप कहीं और देख लें, आई वुड से कि आप वैसा कर लीजिए और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखिए, उसे ना रोकें।
जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो, नमस्ते।
नमस्कार।
मैडम, आपने देखा कि हाँ टैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के जो आना है वो हमें करना है। तो मेरा सवाल ये है कि मैडम, अगर CAGR हमें 12-13-14-15-18% मिल रहे हैं एज फ्रॉम फंड, तो टैक्सेशन के इम्पैक्ट 10-12.5 होने से क्या हम लोग, मतलब मुझे लगता है कि शायद से अगर हमें 15% CAGR मिल रहा है तो 10 साल बाद हमें वो 14% तो मिल ही जाएगा नेट ऑफ टैक्सेशन। इज इट राइट और नॉट इन व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइसेस नॉट गोइंग बियॉन्ड 8% CAGR? सो इजंट इट स्टिल द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे पैसा अपना फंड में लगाए रादर देन एनी प्रॉपर्टी बारे में सोचे? आप इस बारे में जरा बता दीजिए तो बेटर होगा, हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं। थैंक यू।
हाँ जी, तो एक जो आप ये बोल रहे हैं कि हम फंड्स में डाल लें बिकॉज रियल एस्टेट का ऐसा रह रहा है, तो एज एन एसेट क्लास एटलीस्ट हमारा मानना यह है कि इक्विटी फॉर यू नो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिमेन्स द बेस्ट एसेट क्लास। और मैं ये इस तरीके से भी बोलना चाहूंगी कि इवन दो अब इक्विटी से आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा थोड़े कम हो जाएंगे, बट फिर भी जहां तक लॉन्ग टर्म व्यू की बात रह जाती है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज प्रूवन दैट इट कैन हेल्प यू जनरेट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। सो एंड यू नो ऑफकोर्स गिवन द फैक्ट दैट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इवन आफ्टर दिस बजट वी कैन सी दैट इट इज गोइंग स्टिल प्रिटी स्ट्रांग। सो आई वुड एक्चुअली यू नो वॉन्ट इन्वेस्टर्स टू लुक एट इट दिस वे दैट वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी to be a part of a country where we are seeing this kind of growth, be it any sector, infra, manufacturing, defense, we are seeing certain tailwinds that are in support of India as a country, and that is actually getting reflected in the market's momentum as well. We have been seeing for the past 3 years now. So, मैं यही बोलूंगी आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पे बने रहिए, छोटा अमाउंट जैसे आपने बोला SIP के माध्यम से आप इक्विटी फंड्स में डालते रहिए, इक्विटी में तभी डालिएगा बस जब ये आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है।
जी, और स्नेहा, जैसा इन्होंने कहा रिटेल इन्वेस्टर की जहां तक बात है, और अगर हम तुलना करें अगर प्रॉपर्टी से, तो आप प्रॉपर्टी में महीने में 5,000-2,000 रुपए तो नहीं डाल सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप ज्यादा निवेश भी करना चाहते हैं और अगर आपको तत्काल पैसों की जरूरत हो तो म्यूचुअल फंड से आप 3 दिन के अंदर आपके पास पैसे आ सकते हैं, 3-4 दिन में।
बिल्कुल, लिक्विडिटी
बनी रहती है, जबकि प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं होता, अगर जरूरत हो तो 3-4 दिन में प्रॉपर्टी नहीं बिकती है।
एब्सोल्युटली। एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम मथुरा। तरुण, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
यस सर, गुड इवनिंग।
वेरी गुड इवनिंग।
हेलो।
यस तरुण, वेरी गुड इवनिंग, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ए रिक्वेस्ट, प्लीज गिव द ओलंपिक कमेटी ऑन AIF। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लमसम अगर 50,000 रुपया जमा करना चाहूँ म्यूचुअल फंड में तो कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग लमसम के लिए मना करते हैं, तो मैं कम से कम 50,000 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ?
जी तो लमसम को मना करने का जो थॉट प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये रहता है कि अगर कभी आपके पैसे डालने के बाद एकदम से मार्केट गिर जाती है तो जब 50,000 दिखते हैं ना कि 25,000 हो गए तो काफी चुपता है, जबकि अगर आप देखेंगे कि आपके 5,000-2,500 हो गए शायद उतना ना लगे बुरा, क्योंकि आप धीरे धीरे करके इस चीज को बढ़ा पाते हैं। तो ये एक रिग्रेट से बचने का मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि SIP क्या करता है कि वो आप हर महीने डालते रहेंगे, कभी आपके डालने के बाद मार्केट गिर सकती है, कभी आपके डालने के बाद मार्केट उठ सकती है, तो आप अपना कॉस्ट प्राइस एक तरीके से एवरेज कर पाते हैं। तो ना डालने का थॉट प्रोसेस ये रहता है। मैं अभी भी आपको यही बोलना चाहूंगी कि स्पेशली अगर आप इक्विटी में डालने का सोच रहे हैं, अपना हार्ड अर्न मनी लंबे समय के लिए आप फंड्स में डालना चाह रहे हैं, तो उसको ब्रेक करके डालना आपके लिए साइकोलॉजिकली मैनेज करना इजी रहता है।
वैसे स्नेहा, अगर मुझे 10 साल के लिए वो पैसे छोड़ देने हो तो कोई बहुत फर्क पड़ता है लमसम या 10 इंस्टॉलमेंट में डालने से?
एक्चुअली हो सकता है, मतलब मेरे पास एकदम अभी तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं हुई कि मैं आपको वेरीफाई करवा पाऊं, बट होता क्या है कि एक थॉट की बात हो जाती है, अगर आप डाल के संतुष्टि से भूल जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। जहां तक मेरी बात आ जाती है, मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो मैं 5,000 ऐसे करके डाल लेती हूँ तो थोड़ा मेरे लिए सही रहता है।
नहीं, एवरेज आउट करना तो वो बात समझ में आती है, लेकिन जो हम एवरेज देखते हैं कि जिस तरह से हम एक अंदाजा लगाते हैं म्यूचुअल फंड का बाजार कितना बढ़ता है साल में, कितना कुछ होता है, तो अगर 10 साल या एक बहुत लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टर हो तो शायद लमसम और उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रह जाएगा अगर वो 5 इंस्टॉलमेंट में डालता हो या एक बार में डालता हो।
ऑल आई कैन से इज मे बी।
All right, so we have our next caller from Jaipur. We have Jitendra with us. Jitendra ji, swagat hai aapka show mein. Apna sawal poochiye please.
हाँ, थैंक यू। अच्छा मैडम, जैसे अपने मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड होता है तो इस तरह फॉरेन के कंपनियों में अगर हमको इन्वेस्ट करना रहे अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट नहीं, म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो कोई ऐसे एक दो फंड का नाम बताते तो अच्छा रहता मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप की तरह, सेक्टोरल थीम नहीं रहे।
जी तो जहां तक मुझे आपका प्रश्न समझ आया, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि 2022 से इंटरनेशनल फंड्स पे एक लिमिट लगी हुई है, क्योंकि जितना पैसा म्यूचुअल फंड्स को अलाउड है देश के बाहर लगाना वो लिमिट एक्चुअली ब्रीच हो चुकी है, तो वो अभी वहां पे वो लिमिट लगी हुई है। तो कुछ मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फंड्स जो हैं, जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने सस्पेंड करे हुए हैं फ्रेश इन्फ्लोज लेना, मतलब नया पैसा वो नहीं ले रहे हैं इन्वेस्टर्स से। कुछ एक दो होंगे जो ETFs के थ्रू जो स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मिल जाएंगे, बट मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा ही अभी एक्सपोजर चाह रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स में, तो आजकल कुछ म्यूचुअल फंड्स ने कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा रखना स्टार्ट कर दिया था फॉरेन फंड्स में, ऑल दो उनकी भी एलोकेशंस कम हो रही हैं बिकॉज वो नया मनी नहीं डिप्लॉय कर पा रहे, बट जहां तक मेरी नॉलेज है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो अभी भी कुछ परसेंट उसका फॉरेन कंपनीज में है। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा रुके, इंटरनेशनल फंड्स पे जो ओवरऑल लिमिट लगी है वो इन्हांस हो जाए तब आप अपना पैसा डालिएगा, क्योंकि अभी तक नहीं डाला है तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और रुक सकते हैं।
जी कोलकाता से पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लें।
जी
स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी नमस्ते।
नमस्कार
जी, हमें ये पूछना था कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP के साथ, तो दो प्रश्न है मेरे पास। एक तो किसके द्वारा किया जाए, जैसे कि मेरे SBI में मेरा अकाउंट है, तो क्या मैं SBI से ही करना ज्यादा बेनिफिट है, या फिर जैसे एंजल वन और अपस्टॉक वगैरह ऐप आता है इससे करना ज्यादा बेनिफिट होता है, पहला। और दूसरा यह है कि किस लार्ज कैप में करूँ या मिड कैप में करूँ जो ज्यादा बेनिफिट हो 5-7 सालों के लिए। धन्यवाद
जी। तो जो आपका पहला सवाल है कि आप आपका एक बैंक अकाउंट है, आप उन्हीं के थ्रू करना चाहें अगर, तो मैं एक्चुअली आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तो आपको पूरी अच्छे से समझ है कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कैसे हैं, आप खुद चुनाव कर पाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत पता है, तभी आप लार्ज कैप मिड कैप का पूछ रहे हैं। तो अगर आप खुद कर पाते हैं तो बैंक के थ्रू जाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको रेगुलर प्लान्स देंगे। आप खुद से करिए और डायरेक्ट प्लान्स का रूट लीजिए, इसमें थोड़ा सा फायदा रहता है, बैंक को एक थोड़ी सी कमीशन जाती है, तो रेगुलर प्लान्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। आप एक्चुअली अपना फंड सिलेक्ट करके डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के वहीं पे खरीदारी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंड की। वहां पे आप एसआईपी के माध्यम से करना चाहें, आप वहां पे वो इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से उस फंड में पैसा जाता रहेगा। बाकी आजकल काफी सारी फिनटेक एप्स भी आ चुकी हैं, तो अगर आप उनसे आपको उनके बारे में पता है और आपको वो ठीक लगते हैं तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि माध्यम अब डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने के काफी सारे ओपन हो चुके हैं। एमएफ सेंट्रल जो दो रजिस्ट्रार्स हैं म्यूचुअल फंड डोमेन में, कैम्स और के फिनटेक, उनका भी एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कर सकते हैं। तो आई वुड से आप ये सारे एक बार देखिएगा और फिर चूज कर सकते हैं जिसमें आपको मोस्ट कन्वीनियंस मिल जाती है। जहां तक आपका सवाल है कि लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरीज में से किसको देखा जाए, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं या आपको मार्केट में रहकर काफी यू नो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। क्योंकि रहता क्या है, लार्ज कैप शुरुआती निवेशकों के लिए जिन्होंने मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं देखी हुई है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप उनके लिए भी ठीक रहता है। और बाकी एक अग्रेसिव हाइब्रिड काइंड ऑफ अ कैटेगरी रहती है जहां पे थोड़ा सा डेट एलोकेशन आ जाती है, बट वो भी इक्विटी में आपका 65-75 तरीके का एक्सपोजर रखते हैं, तो ये ठीक रहते हैं शुरुआती निवेशक के लिए। मिड कैप के एलोकेशन को आप तब देखिएगा जब आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपका टाइम होराइजन 5 साल से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 7 साल तो रखिएगा ही, क्योंकि वो थोड़ी सी मीडियम साइज कंपनीज में करते हैं जिन्होंने उतनी ज्यादा ग्रोथ अभी नहीं देखी होती है, उनमें अभी बाकी है वो ग्रोथ बनना, और जब भी ग्रोथ बननी होती है तो अप्स एंड डाउन्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, तो बस इस चीज का ध्यान रखते हुए हम चूज कर सकते हैं।
Sneha, you had just mentioned about the fact that there could be a regular plan as well as a direct plan through our program Market Mantra. Suboji, we always try to create a bit of awareness about the layman or the retail or the small investors. Could you please just in brief tell us what is the difference between the direct and the regular plans and how much of a difference does it really make?
Right. So if I have to, mention it this way, the exact difference between a regular plan and a direct plan is the commission that the distributor gets for helping you navigate through the mutual fund domain. So regular plans mein us wajah se the expense ratio can be a bit on the higher side, and exact difference kitna ho jata hai to your investment is something that I will need to calculate and mention, but the difference can be, the effect of that difference can actually be higher for your long-term investments, given that compounding effect can actually play a dampener there.
Absolutely. Caller. And we have our next caller from Kolkata again. This is Devanjan. Devanjan, welcome to the show. Apna sawal poochhe, please.
Namaste, Market Mantra.
Ji, namaskar.
Sabhi ke mara namaskar.
Haan ji, namaskar.
Bahut sare information milte hain. Aur ye duniya ka market ka news yahi milta hai.
Ji. आप सवाल अपना पूछे। सवाल पूछे प्लीज।
मैं 7 साल मार्केट में हूँ, मेरा एक 6 साल का लड़का है, उसके लिए म्यूचुअल फंड करना चाहता हूँ, कौन सा सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए?
जी, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगी कि इट इज ऑलवेज गुड कि हमारे पास, अगर हम डाइवर्सिफाइड फंड से स्टार्ट करें, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो आई वुड लाइक कि आप एसेट क्लास इक्विटी पर जाएं, तो आप फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स को देख सकते हैं जो थोड़ा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालते हैं। अगर मैं आपको दो तीन नाम बताना चाहूं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है जो आप देख सकते हैं, और मैं एक ये भी चीज मेंशन करना चाहूंगी कि क्योंकि आप इतने लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो आप एक ये भी तरीका अपना सकते हैं दैट आप स्टार्ट फ्लेक्सी कैप से करिए, और अगर आपका समय 10 साल से ज्यादा का रहता है, आप थोड़ा सा एडिशनल स्मॉल कैप भी उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में देखा गया है कि चाहे जो इनकी वॉलेटिलिटी होती है उसके वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और आपका रिटर्न बेनिफिट थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
चलिए अगले कॉलर है अतनु साहा कोलकाता से। अतनु स्वागत है, आपका सवाल पूछें।
गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय क्वेश्चन सर अबाउट स्मॉल कैप एंड सम फंड मैनेजर एक्युमुलेट ए ह्यूज अमाउंट अंडर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ह्यूज अमाउंट सो डू वी अवॉइड। थैंक यू
अतनु, कुड यू प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन अगेन अगर आप अपना सवाल।
That is some fund manager, they accumulate a huge amount as an asset. So, like, I'm not necessary to repeat the name, but do we avoid that particular huge amount?
Yeah, they're talking about the AUMs. Yeah, the AUMs are too huge a number. Does it have any role to play?
Right. So, actually, you know, traditionally, or I would say generally, the concept here is that jaise hi the amount becomes too huge for a fund manager to manage, and this problem particularly arises in small cap funds where, you know, the opportunities, the universe is very large, but the kind of opportunities that you can find are very limited when it comes to, you know, a very big AUM that you have, because you have a lot of money to deploy. But you can't really do that in very small companies because they actually lack, you know, on the aspect of liquidity. So there can be actually an issue where a higher AUM can play a dampener on returns over the longer term, specifically in case of small cap funds. But in the same sense, SEBI had asked mutual funds to come up with stress tests on small cap and mid cap funds to highlight as to in how many days, what percentage of their portfolio they can actually liquidate. But I would say that there are certain small cap funds which actually have been able to deliver, if not blockbuster performances, but consistent performances even with a higher AUM. So I would say not to really, you know, go about avoiding all of those kind of funds, because in the small cap domain there are actually pretty good consistent performers which are actually having a very high AUM. So I would say if a kind of fund suits your goals, then you may as well go with it.
And now moving over to our story, steel production in India, driven by robust demand for government infrastructure projects, is projected to surpass 300 million tons MT by 2030, Steel Secretary Nagendra Nath Sinha said. Addressing the Bharat Chamber of Commerce, BCC, in New Delhi, the senior official said current steel demand remains strong with infrastructure push from the government and expecting a growth of about 10%. Mr. Sinha further said that amid the strong GDP growth and continued emphasis on infrastructure from both government and private sectors, steel demand will continue to stay strong. Earlier this week, Union Minister of Steel and Heavy Industries H.D. Kumaraswamy launched SIMS SIMS 2.0 portal, the upgraded steel import monitoring system, to provide actionable intelligence to stakeholders for effective decision making and strategic planning. The market movement is expected to take cues from the FOMC and Bank of England meetings, monthly auto sales numbers and next set of corporate earnings. The primary market will also witness a big action in the week as investors will get opportunities to invest in 10 initial public offerings, including the much-awaited Ola Electric IPO. Several important companies, including ITC, SBI, Adani Ports, Tata Steel, Tata Motors, M&M, Sun Pharma, will release their June quarter reports cards next week.
Sneha, market mantra mein aane aur shrotaon ke sawalon ke jawab dene ke liye bahut bahut dhanyawad.
And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in nearly 53,000 crore rupees into the Indian capital market so far in July. Steel production in India to surpass 300 million tons by 2030, says Steel Secretary Nagendra Nath Sinha. And domestic markets to take cues from global central bank meetings, auto sales and corporate earnings next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.